14.
ये ठीक है,
तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा
आहारेभ्यः प्रहयति परम् यः स्वभावादरज्ञः शस्त्रग्राही भवति सततम् वैरिणा यस्य शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगः तुम न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वशनकुशमयीः किञ्च शस्त्रैरुदस्त्रैः। आहारेभ्यः प्रहयति परम् या स्वभावादरज्ञः शस्त्रग्राही भवति सततम् वैरिणा यस्य शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगः त्वं न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वशनकुसुमयी किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः। आहारेभ्यः प्रहयति परम् यः स्वभावादरत्या। आहारेभ्यः मतलब वस्त्राभूषण इत्यादि। कौन चाहता है वस्त्राभूषण इत्यादि? यह परम, यह स्वयं स्वभावाद हृदया, या यह स्वभावाद हृदया, जो स्वभाव से ही अहृदया, हृदय को अच्छे नहीं लगने वाले हैं, जो लोग अर्थात जो लोग मनोज्ञ नहीं है सीधा, या और वैसे नहीं कहना चाहिए, जो लोग कुरूप हैं, ऐसा लिख दिया पर वो नीरज जी ने इसका अच्छा अर्थ बताया कि जो प्रभावक नहीं है, जो ये सोचते हैं कि मैं अपना प्रभाव जमा पाऊंगा वस्त्र इत्यादि, वो आप जो खुद प्रभावक तो नहीं है लेकिन अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, वे लोग ही आहारेभ्यः अर्थात वस्त्र आभूषण इत्यादि से शरीर को अलंकृत करने की प्रहा अर्थात इच्छा रखते हैं। ये ज्यादा मुझे अच्छा लगा क्रूप की अपेक्षा, जो लोग अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, जिन जो प्रभावक नहीं है, जिनका कोई प्रभाव नहीं है, तो वे अपना प्रभाव बताने के लिए वस्त्र आभूषण इत्यादि कि मेरे पास इतने ऑर्नामेंटेशन है, मतलब मैं बहुत बड़ा हूं, इस तरह का प्रभाव बताने के लिए। और शस्त्रग्राही भवति सततम्, और निरंतर वो शस्त्र को धारण करते हैं, वैरिणा यस्य शक्यः, जो कि अपने वैरियों के द्वारा जीते जा सकते हैं, जो वैरियों के द्वारा जीते जा सकते हैं, मतलब उन्हें शत्रु का भय लगता है, तो ऐसा ले लिया कि जिन्हें अपने शत्रु का डर है वे शस्त्र इत्यादि धारण करते हैं, और जो प्रभावक नहीं है, अपने को प्रभावशाली साबित करना चाहते हैं, वे वस्त्र और आभूषण इत्यादि रखना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हे भगवान सर्वांगेषु त्वमसि सुभगः, लेकिन आप तो सर्वांग सुंदर। अब इस अर्थ से ऊपर वाला लगता है कि वो सुंदर नहीं है जो वस्त्र इत्यादि धारण करते हैं, तो वस्त्र इत्यादि धारण करके भी सुंदर नहीं मालूम पड़ते हैं, आप तो बिना वस्त्र के भी सर्वांग सुंदर हो, तुम न शक्या परेशान, और कोई दूसरा आपको जीते इतनी सामर्थ्य दूसरे में है ही नहीं। एक चीज तो आपका कोई शत्रु नहीं है, दूसरा कि अगर कोई शत्रुता करेगा भी तो आपसे बड़ा तो वो है ही नहीं, तो आपको जीत ही नहीं पाएगा। तब फिर हे भगवान तत्किम भूषा वशन कुमकुशमयी किम च शस्त्रै रुदस्त्रै, और तब फिर आपको भूषा आभूषण और वस्त्र इत्यादि और कुसुम अर्थात फूलों से अपने को सजाने की क्या आवश्यकता है, और न ही आपको शस्त्र और अस्त्र धारण करने की भी आवश्यकता है। मैंने अगर अपने को अप्रभावक माना होता तो सजाने में मुझे देर नहीं लगती, पर मैं तो आपका ही भक्त हूँ इसलिए मुझे इस शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं, वो तो सर्वांग सुंदर अपने आप हो जाएगा जब आपका मैं ध्यान कर रहा हूँ।
आखिरी मैंने उनका इस पे इंटेंशन क्या है, एक ही है कि जब आप और दूसरे लोग जो वस्त्र आभूषण पहन करके सुंदर दिखाई पड़ जाते हैं, मैं भी चाहूं तो वस्त्र आभूषण पहन करके सुंदर दिखाई पड़ सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है कि आप सर्वांग सुंदर हैं इसलिए आप वस्त्र धारण नहीं करते हैं, आभूषण धारण नहीं करते हैं, और आपको कोई जीत नहीं सकता इसलिए आप शस्त्र और अस्त्र धारण, शस्त्र वो कहलाते हैं जिनको की धारण किया जाता है और अस्त्र वे हैं जो कि फेंक करके चलाए जाते हैं, इतना फर्क है, इसलिए शस्त्र और अस्त्र दोनों लिखा हुआ है। दो प्रकार के होते हैं आयुध, एक जो हाथ में तलवार इत्यादि लेकर के जिनको छोड़ा नहीं जाता, दूसरे वाण है या कि भाला है वो फेंक करके चलाए जाने वाले, तो ये दो तरह के होते हैं। तो कह रहे हैं कि न अस्त्र धारण करते हैं न शस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि आपको तो कोई भी जो है जीत नहीं सकता है, आप सबसे ज्यादा समर्थ हैं। हे भगवान, जो जिनका शरीर सुंदर नहीं है, अपन ऐसा कहें, जिनका शरीर सुंदर नहीं है वे अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए वस्त्र और आभूषण की आकांक्षा रखते हैं, और जिन्हें अपने शत्रुओं से हार जाने का भय है वे व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण करके अपने को बलवान साबित करना चाहते हैं, लेकिन हे भगवान आप तो सर्वांग सुंदर हैं और आपको कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए आप न वस्त्र और आभूषण रखते हैं, न ही आप अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह मुझे भी सुंदर होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कहना तो उनको यही है कि मुझे भी सुंदर होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सुबह तक जो है ठीक हो जाऊंगा। लोग अगर सोच रहे हैं कि क्रूप है तो स्वर्ण जैसा शरीर मेरा भी सुबह हो जाएगा, मन में तो वही चीज है, एक ही लगन लगी हुई है कि सुबह तक हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं, इंद्रा सेवाम तौ सुकुरुताम किम तया श्लाघनम ते तस्वेयम भव लय करी लागता मातनोती तम निस्तारी जनन जलधे सिद्धि कांता पतिस्तम तम लोका नाम प्रपुरीति तब लागते सोत्र मिथम। थोड़ा सा कठिन है इसमें, फिर भी पढ़े। इंद्र सेवाम तौ सुकुरुताम किं तया श्लाघनम ते तस्यैवेयम् भौरैकरी श्लाघता मातनोति त्वं निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्ता प्रतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघते स्तोत्रमित्थम्। इंद्र सेवां तौ सुकुरुताम, हे भगवान इंद्रलोक जो है आपकी बहुत स्तुति और वंदना के द्वारा अच्छी तरह सेवा करते हैं, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं क्या? किम तया श्लाघनम ते, वो आपकी प्रशंसा करते हैं इसलिए आप प्रशंसनीय हैं कि इंद्र आपकी सेवा में खड़े हुए हैं इसलिए आपकी प्रशंसा बहुत बढ़ गई, बड़े हो गए आप। मैं नहीं मानता कि इससे आपकी प्रशंसा है, नहीं, इससे तो सत्य व्ययम भव लय करी श्लाघता माचनोती, इसमें तो स्वयं इंद्र ही अपना संसार कम कर रहा है या कि अपने संसार से पार होने का उपाय कर रहा है, वो आपकी सेवा करके अपना संसार घटा रहा है, ये तो उसकी प्रशंसा है, इसमें आपकी क्या प्रशंसा है? ऐसा कह दिया इंद्र जो है, अगर आपकी वंदना पूजा स्तुति कर रहा है तो इससे आपकी कोई महत्ता नहीं सिद्ध होती, ना आपकी कोई प्रशंसा सिद्ध होती, इससे तो इंद्र की प्रशंसा हो रही है कि वो अपना संसार कम कर रहा है आपके माध्यम से। तो फिर भगवान कहते हैं, अच्छा तो फिर तुम मेरी क्यों पूजा कर रहे हो? फिर वेदी मेरी पूजा करने का, तो भगवान तुम निस्तारी जनन जलधे, हम तो आपकी पूजा इसलिए कर रहे हैं, इंद्र पूजा कर रहे हैं इसलिए उनसे प्रभावित होकर के हम आपकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे धोखे में आप नहीं रहना भगवान, हमें मालूम है कि आप क्या क्या हो। देखना, तुम निस्तारी जनन जलधे, आप तो जो है संसार के इस जलधि से मुझे पार करने के लिए जहाज के समान हो। एक चीज सिद्धि कांता पतिस्तम, और आप सिद्धि कांता अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हो। दूसरी प्रशंसा आपकी ये है, तम लोकानाम प्रभु, तीनों लोकों के आप ही ईश्वर हो। तम श्लाघते सुस्मितम, यही आपकी स्तुति और यही आपकी प्रशंसा है। आपके सामने इंद्र खड़े हैं इसलिए आप प्रशंसनीय हो, इसमें कोई प्रशंसा नहीं, नहीं तो हम काय को आपके सामने आते। आप तो मुझे संसार से पार करने वाले हो, आप मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी हो, तीनों लोकों के स्वामी हो आप तो, देख लो इसीलिए तो आपकी पूजा कर रहा हूँ। कल नहीं तो मेरा काम ही बढ़ने वाला, अकेले इंद्र सेवा करेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा तो इसमें मेरी क्या, मेरी प्रशंसा होगी, आपकी क्या प्रशंसा है इसमें, आपकी प्रशंसा तो इसमें है कि जब आप मुझे ठीक ठाक कर दो। चैलेंज दे रहे हैं कि आप तो जो है तीन लोग के स्वामी हो और आपके सामने हम ऐसे रह जाएं, इसमें आपकी क्या प्रशंसा है। प्रशंसा तो सब है, मुझे पार कर दो आप, मैं जो चाह रहा हूँ वो मेरा पूरा कर दो। मैं आपकी सेवा करूंगा तो इसमें मेरी प्रशंसा आपकी प्रशंसा नहीं है। फिर से देखिएगा इसका पूरा अर्थ, हे भगवान इंद्र आपकी सेवा में खड़े हुए हैं इसलिए आप प्रशंसनीय नहीं है, इसलिए आपकी महत्ता नहीं बढ़ रही है। इससे तो इंद्र की ही प्रशंसा हो रही है क्योंकि वो अपना संसार कम कर रहा है, यानी संसार से पार होने का उपाय कर रहा है, इसलिए उसकी प्रशंसा है। तो फिर भगवान कहते कि तो फिर काय के लिए मेरी पूजा कर रहे हो, तो कह रहे हैं आप तो जो है तीन लोक से पार करने वाले, इस संसार रूपी जलधि अर्थात समुद्र से पार करने के लिए जहाज के समान हो, आप तो जो मोक्ष लक्ष्मी है उसके स्वामी हो, तीनों लोकों के ईश्वर आप ही हो, यही आपकी प्रशंसा है और यही आपकी स्तुति है। मैं तो ऐसी प्रशंसा और स्तुति कर रहा हूँ ताकि आपके समान मैं भी हो सकता। अपनो विरद निहार कीजिए आप समय, हम तो आपका विरद, आपकी विरदावली आपसे कहने आए हैं कि आपकी प्रशंसा तो इसमें है, और नहीं तो आपने कुछ नहीं करा तो आपकी क्या प्रशंसा है। हाँ, विरद मतलब प्रशंसा, आपकी प्रशंसा किस बात में है आपको मालूम होना चाहिए। तौ सुकृताम वृत्तिर्वाचामपर सदृशी न स्वमन्येन तुल्यः युक्तिगारा कथमिव तथा त्वय्यमीन क्रमन्ते मैवं भुवन् तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टा ते भव्यानाम अभिमत्फला पारिजाता भवन्ति। अभी सोलवें से चलना है शायद, सोलह नंबर का होगा वृत्तिर्वाचा है तो यही, लेकिन इसका नंबर बदल जाता है कहीं कहीं किताब में। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशि न त्वमन्येन तुल्यः त्युत्युद्गाराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते मैवं भुवन् तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टाः ते भव्यानाम अभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। प्रत्यर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्या युत्युद्गारा कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते मैवं भुवन् तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास्ते भव्यानामपि मत्फला पारिजाता भवन्ति। वृत्तिर्वाचाम, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोलते हैं कि वृत्ति मतलब प्रवृत्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरे वचन है अपर सदृशी आप जैसे नहीं है, अर्थात आप तो चेतन हैं और ये मेरे वचन जो हैं वो जड़ हैं। न तू अन्येन तुल्या, और ये जो वचन हैं अन्येन तुल्या मतलब दूसरे पुरुषों के समान ये हो नहीं सकते, माने क्या कहें उसको, जो बहुत अल्पज्ञ हैं वो इन वचनों का उपयोग करके क्या करेंगे। इस तरह अन्येन तुल्या मतलब दूसरे पुरुषों के समान नहीं है, आपकी तुलना मतलब और दूसरे लोगों से नहीं की जा सकती। मपर सदृश अर्थात अनुपम है, आप तो अनुपम हैं और ये मेरे वचन जो हैं वो आपके जैसे तो है नहीं, और दूसरे लोगों जैसे मतलब आप और दूसरे लोगों जैसे नहीं है, अर्थात आप अनुपम हैं और मेरे वचन इतने अनुपम तो नहीं है कि जो आपके समान हो जाए। इसलिए न स्तुत्युद्गारः त्वयि कथमपि क्रमन्ते, तो फिर मेरे ये जो वचन हैं वो आप तक कैसे पहुंच पाएंगे, मेरे वचन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिसके समान हो उसके पास तो पहुंचेंगे। अब आपके तो समान है नहीं मेरे वचन, आप अनुपम हैं, या ऐसा दो तरह से दिया इन्होंने कि मेरे ये जो वचन हैं वो जड़ रूप है, आप चेतन रूप हैं, मेरे वचनों के द्वारा मैं कुछ उपमाएं देऊंगा तो वो उपमाएं आपकी थोड़ी होंगी, आप तो अनुपम हैं। मैं वचनों से उपमाएं दे सकता हूं कि आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, लेकिन आप तो वैसे हैं ही नहीं, आप तो बहुत अनुपम हैं। मैं कोई भी आपके अनुरूप आपके सदृश कोई भी उपमा देऊंगा लेकिन वो आपके सदृश होगी नहीं, क्योंकि आप उससे अलग ही हैं, मतलब आप उससे अनुपम हैं। इस तरह अपनी अल्पता दर्शा दी कि हे भगवान, जो कुछ भी मैं वचन कहने जा रहा हूं वो और दूसरे लोगों, माने जैसे अन्य अल्पज्ञ लोगों की वाणी होती है वैसी ही हमारी वाणी है, पर आप तो और जैसे हैं नहीं, आप तो अनुपम हैं, इसलिए मेरे ये वचन आप तक कैसे पहुंचेंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे मतलब आपकी प्रशंसा कैसे कर पाएंगे, मेरे इन वचनों में आपकी प्रशंसा हो कैसे सकती, फिर भी और आप तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसलिए आपको, आप तो सिलसिला में जाकर के बैठे हुए हो, मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे वचन आप तक थोड़ी पहुंचेंगे। ये भी उसका एक आशय है, एक तो मेरे वचनों के द्वारा आपकी पूरी स्थिति नहीं हो पाएगी, दूसरे ये मेरे वचन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैवम भुवन, ठीक है नहीं पहुंचे तो फिर अपने मन से ही कहने लगे बाद में कि ठीक है नहीं पहुंचे तो क्या फर्क पड़ने वाला। तदपि भगवान भक्ति पीयूष पुष्टा, लेकिन ये भक्ति रूपी अमृत से भरे हुए ये जो वचन हैं, भव्यानाम अभिमत फला पारिजाता वंती, जैसे पारिजात जो स्वर्ग का वृक्ष है वो कल्प वृक्ष वो सबकी आकांक्षाएं मन वांछित फलों को पूरा कर देता है, ऐसे ही हमारे लिए ये स्तुति रूपी वचन तो कल्प वृक्ष के समान है, हम जो मांगेंगे वो इनसे मिल ही जाएगा। नहीं पहुंचे आपके पास इससे क्या फर्क पड़ने वाला, ऐसा दोनों तरह से अपनी लघुता भी कर दी और अपना कॉन्फिडेंस भी शो कर दिया, मेरे ये वचन जड़ रूप हैं, आप चेतन रूप हैं, मेरे ये वचन तो सामान्य लोगों के समान हैं, आप तो सामान्य लोगों से अन्य हैं, अर्थात आप तो अनुपम हैं, मेरे ये वचन न आपकी स्तुति कर सकते हैं न आप तक ठीक ठीक पहुंच सकते हैं, पर फिर भी नहीं पहुंचे, पर व्यर्थ नहीं जाएंगे, भगवान निष्फल भी नहीं है, ये भक्ति के अमृत से भरे हुए हमारे वचन हमें कल्पवृक्ष के समान है जो हमारा मन वांछित फल हमें दे देंगे, और वही हमें चाहिए। सुबह तक अपने को एक ही चीज चाहिए, ये रात भर निकले और सुबह होगी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं भक्ति रूपी अमृत से भरे वचन हैं, भले ही आप तक नहीं पहुंचे, पर कहते ना हमारी बात आप तक नहीं पहुंचेगी तो मेरा काम कैसे बनेगा, वो कह रहे नहीं पहुंचे हमारा काम तो यहीं से बन जाने वाला है, इतने से ही बन जाने वाला है। पूरा क्या हुआ, हे भगवान हमारे ये वचन जड़ हैं, आप तो चेतन हैं, ये वचन और दूसरे लोगों जैसे ही हैं, और आप तो और दूसरे लोगों जैसे हैं नहीं, आप तो अनुपम हैं, इसलिए इन वचनों के द्वारा आपकी ठीक ठीक हम स्तुति भी नहीं कर पाएंगे और न ही ये वचन आप तक हमारे पहुंचने वाले हैं, तो ना पहुंचे, पर हमारे लिए तो ये भक्ति भाव से भरे हुए वचन ही कल्प वृक्ष के समान हैं जो हमें अपना मन वांछित फल
देंगे, देने में सक्षम है। कोपावेशो नतव नतव, दो बार होना चाहिए है ना, है इसमें थोड़ा नतव नतव। कोपावेशो नतव नतव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तव ही परमोपेक्ष ऐवानपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी क्वैवम भूतम भुवन तिलकम प्राभवम तत्परेषु। कोपावेशो न तव न तव पापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तव हि परमो एक्ष ऐवानपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर् वैरहारी क्वैवम् भुवन। भुवन भी है क्या लिखा हुआ फिर से पढ़ कोपावेशो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तव हि परमो एक्ष ऐवानपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर् वैरहारी क्वैवम् भूतम् भुवन तिलकम् प्राभवम् तत्परेषु। कोपावेशो न तव, आप नाराज भी नहीं होते, कोई अगर आपकी निंदा करे तो आप किसी पे नाराज नहीं होते, न तब काफी देव प्रसाद हो, और कोई आपकी प्रशंसा करे गीत गाए तो आपको खुश भी नहीं होना है। दोनों बातें हम जानते हैं कि अगर कोई आपकी निंदा के वचन कहे तो आप नाराज होने वाले नहीं हैं, और अगर कोई स्तुति करे प्रशंसा करे तो आपका प्रसाद अर्थात आपकी कृपा ऐपा उस पर आप खुश होने वाले नहीं है, उस पर किसी पर आप प्रसन्न नहीं होते। मतलब सब पर जो है व्याप्तम चेता तब ही परमोपेक्ष ऐवानपेक्षम, हे भगवान परमोपेक्षा एव चेता, आपका मन जो है अत्यंत समता भाव रखने वाला है। उपेक्षा का मतलब यहाँ पर समता, उपेक्षा मतलब नेग्लिजेंस नहीं है, परमोपेक्षा, परमोपेक्षा मतलब सबके प्रति समान भाव से युक्त है। व्याप्तम चेता, आपका चित्त परम उपेक्षा से व्याप्त है अर्थात भरा हुआ है, माने सबके प्रति समान भाव से भरा हुआ है। आपके मन में सबके प्रति समानता है, ना किसी निंदा करने वाले के प्रति आपके मन में क्रोध आता है, ना प्रशंसा करने वाले के से उसके आपको कोई हर्ष होता खुशी होती, ना उस पर आपकी कोई कृपा विशेष होती है। फिर भी तदपि आज्ञावश्यम भुवनम, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग आपकी आज्ञा मानते हो, फिर भी ऐसा लगता है आप कुछ किसी से कहते भी नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे सब आपकी आज्ञा में चलते हो, तभी तो सन्निधिर वैरहारी, तब तो सब लोग आकर के आपके पास में और अपना बैर भाव भूल जाते हैं, सांप और न्योला भी आकर के आपके पास बैठ जाते हैं। क्वैवम भुवन भुवन तिलकः प्राभवम तत्परेषु, ऐसा हमने आप जैसा प्रभाव तीनों लोकों में और तो किसी का नहीं देखा, ऐसा आपका प्रभाव है और लोग मेरे बारे में कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा हो कैसे सकता। कल आएंगे सब तो सब शांत हो जाएंगे अपने आप। ये इसका साइड में क्यों ये कहना चाह रहे हैं, ये बात कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, एक तो ये कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ इसलिए आप मेरे ऊपर खुश होकर के मेरा कुछ करेंगे, नहीं ये भी नहीं है, आप वीतरागी हैं और आपके सानिध्य में आकर सब अपना बैर भाव भूल जाते हैं और बैठ जाते हैं, यही तो आपकी प्रभुता है, यही अद्भुतता है, ऐसी अद्भुत प्रभुता तो हमने और कहीं नहीं देखी। अगर कोई विरोधी भी होगा इस धर्म का तो कल आकर के उसका बैर भी सबका
शांत हो जाने वाला है। फिर से देखें, हे भगवान, आप किसी पर भी क्रोध नहीं करते, न ही आप किसी की प्रशंसा से खुश होते हैं, अत्यंत आपके मन में सबके प्रति समता भाव है, या कि समता भाव से आपका मन भरा हुआ है। फिर भी देखता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे सब आपकी आज्ञा में बंधे हुए हों, आपने जैसे सबको आज्ञा दी हो कि चलो बैठो यहाँ पर सब शांत, और सब जो है एकदम शांत भाव से आकर के बैठ गए हैं। ऐसी तो तीनों लोकों की प्रभुता भुवन तिलकम, अर्थात तीनों लोकों में हे श्रेष्ठ, ऐसी प्रभुता तो हमने और किसी के अंदर देखी नहीं जैसी प्रभुता आपके अंदर। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो पूजा करने वाले के प्रति प्रसन्न हो जाता है, निंदा करने वाले के प्रति क्रोध से युक्त हो जाता, और फिर सब पर अपनी वो चलाना चाहता, अपना अधिकार है, सबको अपने अंडर में रखना चाहता। लेकिन आप तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, फिर भी सारे लोग आपकी आज्ञा के वशीभूत हैं और सब आकर के और अपना बैर भाव छोड़ करके बैठे हुए हैं। इसीलिए सब आपके पास आए हुए हैं कि आप सबसे अद्भुत हैं, ऐसी कविता और किसी के पास है। इकट्ठे करना चाहिए था पांच सात अभी
देव स्त्रोत्र त्रिजीव गणिका मंडल गीत कीर्ति स्तोत्र की स्वाम सकल विषय ज्ञान मूर्ति जनोया तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जो पूर्ति पंथा तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैषमो मूर्ति मर्त्या। देवस्तोतु त्रिगणिका मंडलीत कीर्ति स्तोतु देवान् सकल विषय ज्ञानमूर्तिजनोय तस्य क्षेमं न पदमटतो जातिजो पूर्ति पन्था तस्व ग्रन्थ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्या। जातिजो पूर्ति मूर्तिम, इसमें बिंदी जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए मूर्तिम होना चाहिए। सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनोज है, उसमें मूर्तिम होगा। देव स्त्रोतुम त्रिजीव गणिका, त्रिजीव गणिका मतलब अप्सराएं स्वर्ग, त्रिजीव मतलब होता है स्वर्ग, त्रिजीव गणिका मतलब स्वर्ग लोक की अप्सराएं, और फिर मंडली, उनकी मंडली पूरी, उनका समूह, मतलब सीधा हो गया कि देवांगनाओं का समूह या कि अप्सराओं का समूह, वो क्या कर रहा है, उसके द्वारा आपकी स्तुति गाई गई, कीर्ति गाई गई। हे देव, देवांगनाओं के द्वारा भी आपकी कीर्ति गाई गई है। कैसी कीर्ति गाई गई है कि सकल विषय ज्ञान मूर्ति जनोया, कि समस्त पदार्थों को विषय करने वाले सकल विषय ज्ञान मूर्ति, आप कैसे हैं ज्ञान स्वरूपी हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि ज्ञान स्वरूपी त्रिविध कर्म मल, भगवान तो उनका शरीर नहीं है, भगवान का शरीर तो ज्ञानी शरीर है। महावीर अष्टक में भी एक जगह कि आप ज्ञान शरीरी हैं, वैसे तो आप अशरीरी हैं, वैसे ज्ञान शरीरी है, पर आपकी देह जो है सोने के समान है, बाहर से देखा जाए पर आप देह से परे हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि आप सकल पदार्थों को, सब पदार्थों को चराचर विषय करने वाले ज्ञान स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान से युक्त हैं। ऐसी जो है कीर्ति किसने गाई है, पहले गाई थी जब आप हुए थे देवांगनाओं में, मतलब आज वर्तमान से उसको टैली कर रहे हैं,
हे देव, अप्सराओं ने भी आपकी कीर्ति गाई है कि आप ज्ञान मूर्ति हैं, सकल पदार्थों को जानने वाले हैं। तत्त क्षेमम न पदमस्तो जातु जो मूर्ति पंथा। अब जो व्यक्ति ऐसे केवल ज्ञान से युक्त स्वाम स्तोतुम स्तोतूर्ति मतलब शीघ्रता करना, जल्दी करना, कोई व्यक्ति अगर ऐसे आपके स्वरूप की स्तुति करने के लिए तत्पर होता है तो क्षेमम पदम नाटता, तब फिर वो कल्याण के रास्ते पर चलते समय पंथा अटता, अर्थात अटता मतलब जाते हुए, मोक्ष के मार्ग में जाते हुए उस व्यक्ति के लिए कभी भी कठिनाई नहीं आती है। जो उड़ती अर्थात टेढ़ा मेढ़ा पन या जिसको अपन कठिनाई उड़ती, ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं आ पाती। न ये स्मरत्या, उस मनुष्य के लिए तत्व ग्रंथ स्मरण विषय और तत्व के बताने वाले ग्रंथों के स्मरण करने में भी मोह मूर्ति वो कभी मूर्छित नहीं होता है। अब देखना, हे भगवान, अप्सराओं के द्वारा भी आपकी कीर्ति गाई गई है, आप समस्त ज्ञान से युक्त हैं, यदि ज्ञान स्वरूपी ही हैं, ऐसा आपका स्वरूप उस समय गाया गया था। तो आज भी मैं देखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी स्तुति करने में तत्परता करता है तो उसके लिए क्या कहती प्राप्त होती है, वो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो कभी कोई बाधा नहीं आती, जो कुछ भी होता है वो आराम से सहज रूप से वो सब चीज को कर लेता है। और दूसरा, तत्व ग्रंथ के स्मरण में भी उसको कहीं कोई गाफिलता नहीं हो पाती। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मेरे मार्ग में कैसे बाधा आ सकती है। अगर कोई बाधा आई भी है तो हमने तो यही सुना है कि जब देवांगनाओं ने आपकी स्तुति की तो स्तुति करते समय यही कहा था कि आप तो जो है तीनों लोगों के जानने वाले और ज्ञान स्वरूप ही हैं, और आपको कोई भी अगर आपकी स्तुति में तत्पर हो गए तो उसका मार्ग बड़ा क्लियर रहता है, उसके मार्ग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना उसको किसी चीज के तत्व के अभ्यास में कहीं कोई परेशानी होती है, तो ना मुझे तत्वाभ्यास में परेशानी होने वाली है, न मेरे मार्ग में कोई बाधा आने वाली है। ये जो छोटी मोटी बाधाएं हैं वो सब अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि आप तीन लोग के स्वामी हैं और उसकी मैं स्तुति कर रहा हूं, आप तो सब जानते हैं। इस तरह मैंने अज्ञान को प्राप्त, इसमें एक अर्थ और है कि किसी ज्ञानवान की स्थिति करने से क्या होगा, हमारा अज्ञान और सबका अज्ञान हट जाएगा। एक ये भी है, आप ज्ञान स्वरूप ही हैं और कोई आपकी स्तुति करे तो उसका अज्ञान और उसके आसपास, तो आसपास सब लोग अज्ञान पूर्वक ही तो मुझे देख रहे हैं, मेरे बाहर के रूप को इसलिए मुझे रोगी समझ रहे हैं, वे अगर मेरे अंतरंग को देख लेंगे तो मैं तो स्वस्थ हूँ, उनका अज्ञान भी हट जाएगा, मेरा मैं तो अज्ञान तो हटा ही रहा हूँ स्तुति करके, लेकिन आसपास की सब लोग जो है उनका भी अज्ञान हट जाएगा। एक अर्थ ये भी ले सकते हैं, और दूसरा तो ये तो इसका है ही मेन कि उसको अपने मोक्ष के मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, और कभी भी उसको ज्ञान प्राप्ति में, ज्ञान के अभ्यास में भी उसको कोई बाधा नहीं आएगी। एक इसमें बहुत अच्छी सुरसी गावें सुजस सर्वगति ज्ञान स्वरूपी, इसका हिंदी किया है किसी ने, जो तुमको सिर होए नमे भवि आनंद रूपी, ताही शैमपुर चलन वाट बाकी नहीं हो है, श्रुत के सुमरन माही सो न कबहू नर सो। जिसकी स्तुति देवांगनाओं ने गाई है, जो ज्ञान स्वरूपी है, ऐसे आपके उस रूप को स्थिर होकर के जो व्यक्ति ध्याता है या जो व्यक्ति आपकी स्तुति करता है, वो व्यक्ति अपने मोक्ष के मार्ग में कभी भी बाट मतलब कभी भी उसको फेर नहीं होता, कभी भी उसको कोई मुश्किल नहीं आती है, वो आसानी से अपने रास्ते पर चल करके
और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। मैं जो है मेरे मोक्ष मार्ग में कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली है, और अगर कोई बाधा आती भी है तो मैं तो आपकी स्तुति कर रहा हूं, तो मेरी सारी बाधाएं भी दूर हो गई। चित्ते कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान मूर्ति ने चित्ते कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान द्रग वीर रूपम देव देवत्वाम यह समय नियमादादरेणस्तु वीति। थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। चित्ते कुर्वन यहां तक निर्वधि सुख ज्ञान द्रग वीर रूपम देवत्वाम यह समय नियमादादरेणस्तु वीति। आदरे नस्ति यहां से निकालना पड़ेगा। आदरे है एक्चुअली वो, तो नियमा के साथ में उसकी संधि हो जाने से समय नियमा आदरे न, तो समय नियमा दादरे नस्त वीति। श्रेयो मार्गम सखलु सुकृति सावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। और आखिरी में तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, अब तो मैं जब स्तुति कर रहा हूं तो आपके जैसा ही हो जाऊंगा। लास्ट लास्ट पद ये है, चित्ते कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान हम ये ज्ञान मूर्तिम जनोजा वो आ जाता है। चित्ते कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान द्रव वीर्य रूपम देव स्वाम समय नियमा दादरे नस्तुभि। शेयो मार्गम सकलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषया पंचिता कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान द्रग वीर रूपम। भगवान ने क्या क्या चीजें पाली हैं? निर्वधि अर्थात अनंत, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, द्रग मतलब दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत वीर मतलब अनंत बल। ऐसा क्या चीजें जैसी खांसी सुख तो आई गया इसमें, तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत बल, ऐसी चार चीजें, ऐसी इनसे युक्त जिसका रूप है ऐसे आप हैं भगवान। चित्ते कुर्वन जो वे देव त्वाम यह हे भगवान, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और बल से युक्त आपके रूप का जो व्यक्ति अपने चित्त में अपने हृदय में स्मरण करता है, समय नियमान आदरेण कंडीशन है, जो समय है तीन संध्या काल, उन तीनों संध्या काल में, माने ऐसा नहीं जब कभी करता हो तो ठीक है, पर नियम से तीनों संध्या कालों में जिसको हम कहते हैं ना कि देव वंदना करना या दिशामय करना, तो तीनों संध्या कालों में समय का ध्यान रखे और आदरेण इसके बीच में
चित पद तत्कीर्तने न क्षमा सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः के हंत मंदावयम् अस्मादि स्तवन छलेन तु परस् त्वयादव स्तम्यते स्वात्मादीन सुखैषिणां सखलु नः कल्याण कर्तृम। वादी राजमनु शाब्दिक लोको वादी राजमनु तार्किक सिंहा वादी राजमनु काव्य कृतस्ते वादी राजमनु भव्य सहाय इति श्री वादी राजमुनि प्रणीतमेकी भाव स्तोत्रम समाप्तम्।